نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة آل عمران آیت نمبر 14 to 22 ہمارا آج کا یہ سبق ہے پچھلے سبق میں ہم نے آخر میں دیکھا تھا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اس کو پڑھنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی مانگی ہوئی اپنی دعا یاد آنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہر وہ دن نماز میں کئی بار تم پڑھتے ہو کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا کیونکہ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہدایت پہ آنے کے بعد بھی انسان دور ہو جاتا ہے اس لیے کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا آج کے سبق کے آغاز میں بہت اہم سبق ہے آج کا بہت ہی اہم ہم سب کے لیے کیا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب جس کی وجہ سے عموماً لوگ ہدایت کے راستے پہ چلتے چلتے بھٹک جاتے ہیں وہ بیان کیے اللہ نے ان کو نعمت بنا کے انسان کو دیا لیکن انسان بعض دفعہ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے نعمتوں کے معاملے میں انسان کا رویہ بہت زیادہ کیئر لیس ہوتا ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ بعض دفعہ ہم ساری زندگی جس نعمت کی دعا کرتے ہیں نا جب وہ نعمت ملتی ہے تو ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو آپ سب نے اور میں نے پہلی ہی آیت کو پچھلے سبق کی آخری آیت کے تناظر میں سننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اور آج کے سبق میں آپ کو ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو انسانیت کو ہدایت سے دور کرتی ہے یا علم آنے کے باوجود بھٹکاتی ہے اور وہ ہے آپس کے اختلافات فرقے بازی مطلب پورا سبق اگر آپ دیکھیں نا تو علم کے گرد گھومتا ہے بیچ میں شہید اللہ انہ لا الہ الا اس میں علم اور علم والوں کی بات کی گئی شروع میں مرغوبات نفس کی بات کر کے بتا دیا گیا کہ ہم نے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے لیکن آخر میں یہ بتا دیا کہ شیطان علم کے آنے کے باوجود کچھ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کے نام پر بھٹکا دیتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ علم دین پہ آ کر بھی انسان دین پہ نہیں رہتا تو آئیے ذرا آیت کو دیکھیں یہ پہلی آیت ذرا طویل آیت ہے اور ایسی آیتوں کو پھر ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو زیادہ آسان ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کروں گی کہ ہم لوگ اس کو بالکل ساتھ ساتھ لیتے جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زین للناس حب الشہوات مزین بنا دی گئی خوبصورت کر دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات نفس کی محبت کیا سمجھ آ رہا ہے آپ ذرا ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں نا تو بنا دی گئی زین للناس حب الشہوات ایک ہوتا ہے زینت یہاں زینت نہیں ہے زو پہ پیش ہے مجھول ہے یہ آپ اس کو پیسو وائس کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں اس قسم کا انداز جب ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے ڈالی ہے تو پہلا ہی سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت کس نے ڈالی اللہ نے ڈالی ہے کہ شیطان نے ڈال دی یا ہم خود ہی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ اللہ نے ڈالی ہے تو بھی شیطان نے اس کو بڑھا دیا ہے تو بھی یا تمہارے اپنے نفس کے شیطان نے ہی ان سب کو لے لیا ہے لیکن یہ سچ ہے کیا کہ انسان کے دل میں خوبصورت بنا دی گئی ہر انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ان چیزوں کی طرف جھکتا ہے کن چیزوں کی طرف جھکتا ہے تھوڑا سا آگے ترجمہ پورا کر کے پھر چلتے ہیں زین للناس یہاں لفظ للناس پہ بھی غور کر لیں لوگ مسلم اینڈ کافر بلیور اور ڈس بلیور سینرز اینڈ گڈ ڈیڈ ڈوئرز اچھے کام کرنے لے بھی برے بھی یعنی یہ نہ کہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد فوراً آپ کہیں گے میرے دل سے ان ساری چیزوں کو نکال دیا گیا نکل گیا ٹائم لگتا ہے نکالنے میں یا کنٹرول کرنے میں جیسے جانور کو ٹیم کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس طرح دل میں ان چیزوں کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ یہ خواہش اوور کنٹرول نہیں ہوتی انڈر کنٹرول رہ جاتی ہے اور یہی خواہش پھر سبب بنتی ہے ان ساری چیزوں کو آخرت میں پانے کی نیت سے کہ ہم پھر مزید کوشش کریں کہ دنیا میں تو اللہ نے بن مانگے دے دی, ہمیں وہاں بھی لینی ہے. خیر, حب الشہوات, حب محبت, پیچھے بات کر چکے. شہوات کا لفظ دیکھیے گا, شہوت ان کی جمع شہوات, لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی خواہشوں کی محبت. دیکھیے, ایک چیز ہے چیزوں کی محبت, یہاں چیزوں کی محبت نہیں ہے, خواہشوں کی محبت. زینت دے دی گئی انسانوں کے لیے خواہش والی چیزوں کی, یعنی چیز نہیں, چیز کی بھی محبت. مثلاً آپ اس کو فرق سمجھنے کے لیے لکھ لیں اپنے پر, ایک ہے گاڑی کی محبت, گاڑی آپ کی ہوئی آپ کو اس سے محبت ہو گئی, یہ بھی ہے. لیکن یہاں یہ نہیں مراد, یہاں یہ ہے کہ گاڑی کی محبت کی محبت. مثلاً گاڑی ہو نہ ہو, بچے اس کے بارے میں بچپن سے 4-6 سال کے بچے شروع ہو جاتے ہیں اور آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں, یہ تیری ہے یہ میری ہے. اس طرح کی کیفیت کیا بتاتی کہ آپ کے دل میں اس گاڑی کی محبت آ گئی ہے. تو ذکر کرنا, اب اپنی بیوی ہے یا کسی کی, بس عورت ہے تو خوبصورت دکھ رہی ہے تو اس کے بارے میں لوگ کر رہے ہیں کوشش کہ بس ٹھیک ہے ہمیں ان سے محبت کرنی ہے, ہم ان کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. یعنی کہنے کا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان عموماً باتیں کرنا چاہتے ہیں, باتیں سننا چاہتے ہیں, وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ لوگ ان چیزوں کی محبت میں جیتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی باتیں کرتے رہیں. چلیے, یہ بھی ہو گئی. حب الشہوات کے اندر کس کس چیز کی ہے؟ نمبر ایک, من النساء, عورتوں کی محبت. نساء کا لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے. اگر یہاں یہ لفظ ہوتا ہے نا, زین للناس حب الشہوات من الازواج یا من زوجت, یا آپ کے لیے ازواج کے ساتھ آپ کہہ لیجیے, امرات ان کا بھی لفظ کہیں نہ کہیں ہوتا تو اس میں بات سمجھ آنی تھی کہ یہ صرف بیوی کی محبت ہے, یہاں نساء کی بات ہے. یعنی بیوی تو وہ بعد میں بنے گی, عورت ہونے کے ناطے محبت شروع ہو جاتی ہے. یعنی ابھی زندگی کے ابتدائی دن ہوتے ہیں, ابھی جوانی بھی پوری نہیں آئی آتی انسان کے اوپر کہ عورتوں کی, لڑکیوں کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے. اپوزٹ سیکس کہہ لیجیے, جن سے مخالف کی جو محبت دلوں میں ڈلی ہوئی ہے نا, اس کی طرف اشارہ ہے. اور جب ماحول ایسا ہو کہ ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ اس کو اشتہا دینے والی ہو, تو یہ محبت خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے اور انسان کو پھر بہت زیادہ اس میں نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن خیر, ہوتی ہے, بیوی کے ساتھ کی جائے تو اچھی ہے, کسی کی بیوی کے ساتھ کی جائے تو حرام ہے. اور شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ اس محبت کا ہو جانا گناہ نہیں ہے اگر خود ہو جائے, لیکن ان سارے اسباب کو ختم کر کے جو گناہ کی طرف لے جائیں, اگر اس کے باپ یا بھائی سے رشتہ مانگا جا سکے تو رشتہ مانگ کے اس کو بیوی بنا لیا جائے, دیٹس اٹ. اتنا لو اور اتنی لو میرج تو اسلام میں جائز ہے. کسی کا تذکرہ سنا, کسی کی خوبی سے متاثر ہوئے, کہیں بھی کوئی بات ہو گئی, اس کے علاوہ ہر محبت جو کسی مرد کی کسی عورت سے ہے وہ حرام ہے, غلط طریقے سے, یعنی سیکشوئل معنی میں. ویسے تو رشتوں کی محبت بہت ساری ہوتی ہے, بہنوں سے, ماؤں سے, بیٹیوں سے, تو وہ تو ہوتی, لیکن یہاں جس سینس میں بات کی جا رہی ہے وہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری محبتیں عورتوں کی, بل بنین اور بیٹے, بن سے بنین بیٹے, اولاد مراد ہے, سے خاص طور پہ بیٹے بھی ہوتے ہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بیٹوں کی محبت مرد میں ڈالی ہے, تو کیا بیٹیوں سے محبت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, لیکن بیٹے کی محبت ڈومیننٹ ہوتی ہے, خواہش بیٹے کی ہوتی ہے, پھر بیٹی ہو جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یعنی پوچھا جائے کسی سے کیا چاہیے تو بیٹا, لیکن جب بیٹیاں آ جاتی ہیں نا, پھر وہ بیٹوں سے بھی پیاری ہو جاتی ہیں عام طور پہ. خیر, اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماں ترکت بعدی فتنۃ ادر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی کہ عورت کی محبت انسان کو بعد دفعہ زنا اور گناہ اور شراب کباب تک لے جاتی ہے. آج اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک جال پھیلا ہوا ہے گندگی کا, بےہودگی کا, بے حیائی کا, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے آپ کو کس طرح سے رسوا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں, تو یہ ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز, بنین निसा। और अब तीसरी चीज क्या है? वल कनातीरिल मुकंतरती मिन ज़हबी वल फिद्दा, और जमा किए हुए खजाने सोने के और चांदी के। ये जो लफ्ज कनातीर और मुकंतरत है ना, ये एक ही लफ्ज है, ये लिख लें ये रुबाई है। अमूमन तो आपको तीन रूट लिखाए जाते हैं ना, इसके चार हैं, काफ नून तोए रो। कंतरा कनातीर जमा है खजाने ढेर। कंतरा पुल सरात के आखिरी सिरे को भी कहते हैं, बास कहते हैं एक अलग पुल है, बास कहते हैं कि पुल सरात का जो आखिरी हिस्सा है उसको कंतरा कहते हैं। तो कनातीर काफ नून तोए रा है पुल या बुलंद इमारत को कहते हैं। कंतरा अलैना कहते हैं वो हमारे पास तवील अरसे तक जम कर रहे, यानी कोई आए आपके घर और काफी दिन रहे, जम के रहे, तो आप उसके लिए भी लफ्ज मुकंतरा कहते हैं। तो इस लफ्ज में कसरत का तसव्वुर है। कुरान पाक में आपको ज्यादा नहीं ये लफ्ज दिखेगा, इसलिए इसकी वजाहत जहां जरूरी है। कसरत का तसव्वुर होता है माल की गैर मुतय्यन मकदार, जिसको आप कहते हैं काउंटलेस मनी, पता ही नहीं है पैसे कितने हैं। इसके लिए गैर मुतय्यन हो, जो किसी के लिए काफी हो। और जो माल जमा कर करके रखा जाता है ना, उसको भी कंतरा कहते हैं, सेविंग्स के मानों में लिख लीजिए। और इसमें मुबालगा है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ सोने चांदी की बात की, और इस आयत में बाकी चीजों के साथ सोने चांदी की बात, और वो भी साथ ही ज़हबी वल फिद्दा। तो ये हकीकत है कि इंसान के दिल में माल दौलत की मोहब्बत होती है, इस्तेमाल करे ना करे, खुद करे ना करे, किसी को दे ना दे, ये कागज की गड्डियों को देखकर खुश बहुत होता है इंसान। पहले हाथों में नोट होते थे या सोना चांदी होता था, अब तो सिर्फ फिगर्स एंड फैक्ट्स देख देख के खुश होगा, अपनी स्टेटमेंट देख के खुश होंगे, नेट बैंक से चेक करके खुश होंगे, कितना रह गया कितना है। और इसकी भी हद अब खत्म हुई, पहले हाथ में चीज थी सोने की जगह कागज आ गया, कागजों से खुश हो गए, फिर कागजों की जगह चेकबुक ने ले ली, फिर नेट बैंक हो गया, अब तो कार्ड जो उधार पे चलते हैं, यानी जिसकी जेब में जितने कार्ड, कहीं गोल्डन कार्ड और कहीं एक्सप्रेस कार्ड और कहीं वीआईपी कार्ड, वो उतना खुश है। तो दिन ब दिन आप देखिए कि पैसा कम होता जा रहा है हाथों में, लेकिन उसकी मोहब्बत और उसका लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि इंसान पहले तो कहता था अपनी चादर देख कर लो, जो मेरे पैसे हैं मुझे उसकी खुशी है, अब कहते हैं नहीं वो मुझे जितना उधार देते हैं उतनी मुझे खुशी है, मैं तुम्हें 1 करोड़ का लोन ले दूं, ले दीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है, आप अपने सर पे बोझ डालेंगे। तो इंसान इन सारी चीजों को एक हिसाब में रख के करे तो अल्लाह ताला फायदा उससे दिलवाएंगे। आप देखिए कि पीछे थे मुनफिकीन, खर्च करने वाले, मुनफिकीन खर्च करने वाले ना, जो दौलत के मुंह खोल देते हैं। यहां क्या है? कंतरा मुकंतरा थे, यानी समेटने वाले, कह लीजिए कि उससे ऑपोजिट चीज है, ऐसी चीजों की बात है। फिर आप देखिए जहब की बात आगे आ रही है। जहब जालहा लफ्ज में रूट लिखा हुआ है। जहाब का असली मानी होता है चला जाना, उड़ जाना, गुजर जाना। जहब अभी ही कहते हैं ले जाना। जहब अलैया कजा कहते हैं फुलां बात को मैं भूल गया, लेकिन अगर जहबा के बाद अन आ जाए, जहबा अन, तो मानी होता है छोड़ देना, और इलाज है तो मुतवज्जो होना। अब ये तो सारी चीजें मौजूद थी, उधर हो गई, अब यहां सोने के लिए लफ्ज क्यों आ गया? सोना क्या है? आप उसको आज लाते हैं वो जाता है, सोना है ही जाने वाली चीज। आपके पास है चोरी हुआ तो चला जाएगा, आप पहनेंगे तो पहन पहन के घिसेगा, आप ज्वेलर के पास लेके जाएंगे साफ कराने के लिए तो कम हो जाएगा, आप उसका डिजाइन तब्दील करवाएंगे चेंज करवाने के लिए तो आपके उसमें से भी कम होगा। आप 10 ग्राम सोने की एक डली लेकर जाएं सुनार के पास, आप कहते हैं मुझे इसका जेवर बना दो, वो कहेगा और पैसे देंगे या इसी के अंदर बना दो, आप कहते हैं नहीं मैंने और नहीं देना, इसी के अंदर बना दो। जब आप लेकर आएंगे ना तो वो 7 तोले होगा, 3 तोले उसने आपकी 10% 15% वेस्टेज निकाल ली, उसमें भनवाई डाल दी, उसमें पॉलिश के पैसे, उसमें मोतियों के पैसे, अगर आप नगों वाला बनाएंगे तो आप 10 की जगह 5 लेके आएंगे, आप बड़े खुश हैं, कुछ नहीं देना पड़ा, पुरानी चूड़ियां देके नहीं ले आई। हमारी औरतों का पेट जुमला भाई, नई और पुरानी का वजन कर लो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, जहब अभी ही वो ले गया आपका सोने को। तो सोना जो होता है ना, ये बस एक धोखा ही कह लीजिए, और खास तौर पे उस सोने को जहब कहते हैं जो कान से निकालकर साफ किया गया हो, ये कान नहीं, हमारे कानों में से नहीं, जहां से वो निकलता है, माइंस, जो अभी कान में हो और गलाकर साफ ना किया गया ना, अभी कच्चा सोना या वो जिसको रॉ कहते हैं उसको तिब्र कहते हैं, वो भी आएगा कुरान में। तिब्र पत्रियों को कहते हैं बेसिकली, जिस चीज पर सोने का मुलम्मा किया गया हो, यानी सोने का पानी फेरा हो, प्लेटिंग की गई हो, उसको ऊपर कवरिंग की गई हो, या सोने का पतरा चढ़ाया गया हो, उसको मुजहबुन कहते हैं, जहब से मुजहब। जहीबर रजुलु कहते हैं उस वक्त जब कोई शख्स एकदम कान में बहुत सा सोना देखे, किसी जगह गया कान में देखा इतना सोना, कहते वाह, तो उसको देखकर हैरान हो जाए, मबहूत हो जाए, तो इसके लिए लफ्ज बोलते हैं जहीबर रजुलु, यानी बंदा परेशान हो गया। तो फिर दो लफ्ज हैं इसके अंदर, एक तो चले जाना अभी तक डिस्कस किए, एक और लफ्ज भी है इसके अंदर और वो है हुसन और ताजगी। तो सोने को सोना क्यों कहते हैं, चला भी जाता है, और दूसरी बात है कि हुसन और ताजगी की दलील होती है। इंसान जब सोना पहनता है तो उसके अंदर एक नजाकत आती है, औरत है तो उसके अंदर औरतपन की समझ आती है, और दूसरी चीजें जो है वो भी आती है। फिर अगर पीछे से लफ्ज शहवत आए ना, अगर आप उसको भी यहाँ थोड़ा सा चेक कीजिए ना, तो शहवत और शीन हावाओ पहले भी पढ़ा हुआ आपने, शहवत, ख्वाहिशात, मिलान, रगबत। तो सोना चांदी जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसको देख लें, या ऊपर जो औरत और मर्द बच्चों की बात है, तो मर्दों का इंक्लाइनेशन औरतों और बच्चों में, औरतों का इंक्लाइनेशन सोने और चांदी में। अब ज़ाती फिजा का लफ्ज भी आ गया, तो फिजा क्या है, चांदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं भी चांदी को फिजा, फा द्वाद द्वाद इसका रूट होता है, फद्दू कहते हैं बिखरने को, जमा होने के बाद मुतफरक कर देना किसी चीज को, तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना, इन फद्दा कहते हैं टूट कर बिखर जाने को। कहीं पढ़े आपने, अफीदू मिन हैसु अफाद अन्नास, कहां पढ़े, हज के आयतों में सूरत बकरा में, वो भी ये लफ्ज है, तुम उधर से बिखर जाओ, उधर लौट जाओ, मुतफरिक हो जाओ जिधर के लोग जाते हैं। इसीलिए फद्दा मिन अन्नास कहते हैं मुतफरिक लोगों को, रैंडम पीपल। लन फद्दु मिन हौली किसी सूरत की आयत 158 में हम पढ़ेंगे, नबी सल्लम को कहा गया कि अगर आप क्या इखलाक अच्छा ना होता ना, तो ये सब आपके इर्द गिर्द से बिखर जाते, आपसे अलग हो जाते। सूरह जुमा में भी हम पढ़ेंगे इन फद्दु इलैहा, मजमे को छोड़कर अलग हो जाते। तो बहरहाल चांदी को फिजा कहते हैं। वल खैल घोड़ा, अब फिर मर्दों की बातें आ गई, और घोड़ा कौन सा, अल मुसव्वमा निशान लगा हुआ, ब्रांडेड घोड़े, अरबी घोड़े, या आज के दौर में गाड़ियां कह लीजिए। घोड़े को खैल क्यों कहते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, खा या लाम इसका रूट है, खाला या खालू गुमान करने को कहते हैं। ये जो लफ्ज है ना ख्याल, मेरे ख्याल में, मैं ख्यालों की दुनिया में खो गई, वो भी इसी से है। घोड़े के अंदर एक खूबसूरती होती है, उसकी चाल में एक रियानत होती है। ख्याल क्या है, जो चीज है नहीं लेकिन आपको ऐसी दिख रही है, ठीक है। असहाबतुल मुहैयिला, तो उस बादल को कहते हैं कि तुम सोचो कि ये बरसेगा, यानी देख के आप कहते हैं ये बादल आज बहुत बरसेगा, लेकिन वो बाद में बरसे ना बरसे, ये बाद की बात है। फिर इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि किसान अपने खेतों में एक डंडी सी डाल के ना, तो उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देते हैं, क्यों, चिड़िया तोते तब तो बेवकूफी होते होंगे, आजकल तो मुझे लगता है वो भी समझदार हो गए होंगे। मैंने खुद देखा, वैसे हम पहले तस्वीरों में भी देखते थे जब गुजरना कहीं सफर में, तो दो डंडियां खड़ी करके ना उसके ऊपर कपड़ा डाल के ऊपर एक पगड़ी सी या टोपी रख देते थे, तो दूर से वो हवा के साथ चहलता वैसे लगता था आदमी था, लेकिन उसके साथ चिड़ियों को धोखा दिया जाता है। तो इसको भी अल खयालू कहते हैं, यानी ख्याल में वो समझता है कि ये इंसान है लेकिन वो इंसान नहीं होता, स्केयर क्रू कहते हैं जिसको इंग्लिश में, कि जानवरों को धोखा देने के लिए ताकि जानवर जा कोई और ना पास है। तो बहरहाल यहाँ ख्याल से मुराद है कि घोड़े की खूबसूरती, खैल घोड़ा, और हदीस में आता है कि जो अरबी घोड़ा है ना, ये हर रोज अपने पालने वाले के लिए सुबह उठ के दुआ करता है, यानी ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इस जानवर को अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है। और अरब कल्चर के साथ घोड़े का बहुत ज्यादा अच्छा सबर है, और घोड़ों में से भी उस घोड़े को ख्याल कहते हैं कि जो अपनी रफ्तार में इठलाता हुआ चले, चलने में उसकी खूबसूरती है, और घुड़सवार के दिल में उसको देखकर खुशी हो, मोहब्बत हो, इसी तरह घुड़सवारों के दस्ते को भी खैल कहते हैं, यानी जो आप कह लीजिए कि ट्रूप की शक्ल में काम करते हैं। बहरहाल मुसव्वमा क्या है? सीन वाव मीम। सौम कहते हैं किसी चीज की तलाश और जुस्तजू में जाना, तलाश करना, ढूंढना। अब मुसव्वमा के लफ्ज में क्या पता चला? साम अल इबिल कहते हैं ऊंट चरने के लिए गए, या उनको चरने के लिए छोड़ दिया। ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, यसूमूना को मिनसू इलाजा, पहुंचाने में। तो यहां मुराद क्या है कि घोड़े की निशानी। आप पढ़ेंगे सूरह फतह में सीमा हूं, सीमा का जो लफ्ज है वो भी इसी से, अलामत, निशानियां। तो घोड़ों की निशानियों से यहां मुराद है बेहतरीन घोड़े, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया और छोड़ दिया उनको चरने के लिए। खैर, घोड़े की बात होगी, वाला नाम। अच्छा, इनाम कह दूं मैं? फर्क तो नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा फर्क। अनाम नौम से, नून ऐन मीम, चुपाए, कैटल्स, माल मवेशी, ढोर डंगर जिसको आप कहेंगे। नेम, इसने किसी चीज या मंजर को ऐसी कैफियत में पाया जिससे इसकी आंखें ठंडी हो गई। यानी नेम के लफ्ज में ठंडक है, और जिनके जानवर होते हैं गाय भैंस, वो देखे उनको देखकर खुश होते हैं। वो बीवी बच्चों को देखकर खुश हो ना हो, लेकिन भैंस बकरियों को देखकर बड़ा खुश होते हैं, उनके दूध को देखकर बड़ा खुश होते हैं। तो नाम चीज के जिससे आंखों में ठंडक हो। इसी से ततईमतु, एक पौधा है जिसके पत्ते नरमो नाजक और सरसब्जो शादाब होते हैं, और वो पानी पर पैदा होता है जिससे इसकी तरोताजगी में कोई फर्क नहीं आता। तो अनाम से क्या फिर मुराद है इधर? के चौपाए, कैटल्स। और इस पे बहुत सारे और मानी बनते हैं, लेकिन आप उलझ ना जाए। तो इतना देख लीजिए कि ये कोई अच्छी ही चीज है जिसकी तरफ अल्लाह तआला ने इंसान की तवज्जो दिलाई है। चलिए फिर उसके बाद आप देखिए वल हर्स। हर्स कहते हैं खेती को, पीछे पढ़ चुके हैं, निसाउकुम हर्सुल्लकुम। हारिस कहते हैं किसान को, नाम भी होता है हमारे आमतौर पे। असल में हर्स का मानी होता है कुछ कमाना, टू अर्न समथिंग, कसब और हुनर करना। फिर जब लोगों ने जमीन पे काम करना शुरू किया ना, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होने लग गया, खेती बाड़ी करना। क्योंकि इंसान कमाता है, तगोदौ करता है, फिकर होती है, तजस्सुस होता है। तो इसी तरह अल हर्सु के मानी आग को हरकत देना ताकि वो ज्यादा रोशन हो जाए। और मेहरास किसको कहते हैं? अगर कभी आपने किसी को तंदूर जलाते देखा हो ना, तो उन्होंने अपने पास एक डंडी सी रखी होती है। जब वो देखते हैं ना कि ऊपर बहुत राख भर गई और नीचे सुलगते हुए कोयले हैं, तो वो लकड़ी लेके ना, तो उसको ऐसे कुरेदते हैं, तो वो नीचे से एकदम फिर आग आती, उस लकड़ी को मेहरास कहते हैं। इसी से है वो भी लफ्ज, इसी के अंदर से आता है वो लफ्ज भी। तो यहां फिर क्या मतलब है? खेतियां जिससे इंसान की नस्ल आगे चलती, हर्स होगी खेतियां। अब कितनी चीजें जरा गिने दोबारा, निसा, बनीन, कनातीरिल मुकंतरा मिनज़ ज़हबी वल फिद्दा, खैलिल मुसव्वमा, अनाम, हर्स। सात चीजें बनती हैं अगर सोने चांदी को अलग कर लें। कज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की मता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें। और मता आपको बताया था वक्ती फायदे की चीज, जस्ट फॉर टाइम बींग, जरूरियात जिंदगी का साजो सामान है, हर वो चीज जिससे आप थोड़ा सा फायदा उठा ले सफर के दौरान है, या आपकी मुता का लफ्ज इसी से है, जो भी एक औरत को दिया जाता है तलाक की सूरत में। तो क्या पता चला कि इस दुनिया में फायदा उठाने के लिए तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, अल्लाह के पास तो बेहतरीन ठिकाना है। दुनिया में ये चीजें हैं, लेकिन असल में अल्लाह के पास क्या है? हमेशा या बाद में देर तक उठाए जाने वाला सामान। ये जो माब लफ्ज है ना, इसको देखिएगा, देखने में मीम लग रहा है ना, लेकिन इसका रूट क्या है? ये गलती लग सकती है, इसलिए पारे में आ जाएगा, नोट कर ले इसको। हमजा यानी अलिफ, वाव और बा। अल औब कहते हैं तेज दौड़ते वक्त टांगों को लौटाकर पीछे करना। कोई किसी को भी चलता देखे तो वो टांगों को थोड़ा सा मोड़ के चले तो तेज चलता है, तेजी से घुमाना। इसी तरह अल औबात कहते हैं टांगों को। अत्तावीब कहते हैं दिन भर सफर करके रात में ठहरना। औब का मानी फिर लौटना, रजू करना क्यों हुआ? क्योंकि इंसान एक जगह से उठा, आगे गया, फिर वापस पीछे आ गया। और बगैर इरादे के रजू करना, माब पलटना यानी पलटने की जगह इसम जर्फ है, रजू करना मुस्तकर के मानों में। अल्लाह ताला कहते हैं कहाँ तक चलोगे, कितना मजा करोगे, एक दिन तुमने पलट कर हमारे पास आना है। अगर एक इंसान गौर करे ना तो उसकी जिंदगी बस इन चंद चीजों के बीच में घूमती है। आप और मैं जरा अपनी जिंदगी पे गौर फिक्र करें ना, सुबह से शाम होती है और शाम से रात होती है और रात से फिर सुबह होती है। वो कहते हैं ना कि सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये सात चीजें जिन्होंने आज इंसानियत को मसरूफ किया हुआ, ये इतनी मजबूत है अपनी मोहब्बत में कि इसकी वजह से मकसद जिंदगी भी भूला हुआ है। फिर एक और बात नोट करें, जम बना लें इस बारे का, ये चीजें मुजयन तो की गई थी लेकिन इंसान ने इसको मकसद बना लिया। इन चीजों को जिंदगी का मकसद नहीं बनाना, और इसको अगर मकसद बनाया जाए ना तो नुकसान क्या है? सवाल है आपके लिए। बेसकूनी, नफरतें, हसद, तकाबुल, दौड़, उसने ये लिया मेरे घर ये नहीं, उसके घर ये नहीं, मेरे वो नहीं, तुम्हारे ये नहीं, यानी जब बंदा अपनी जिंदगी में सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ने लगता है ना तो उसकी जिंदगी बेसकून हो जाती है, दूसरों से हसद के जज्बे पैदा होते हैं और दूसरों के लिए एक इंसान अपने आप को नुमाया करने के लिए न जाने क्या कुछ करने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये जो पीछे आपको बताई कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, हिदायत की पगडंडी पे चलता चलता बंदा इन सात में से किसी एक चीज की वजह से पीछे हट जाता है। जिसको हिदायत प्यारी होगी ना वो इन सब चीजों से फायदा उठाएगा, मगर कैसे? जैसे हम छुरी से फायदा उठाते हैं, जैसे हम कैंची से फायदा उठाते हैं, जैसे हम सुई से फायदा उठाते हैं। इन चीजों के बगैर हमारा गुजर नहीं, लेकिन हम सुई से कपड़ा सीते हुए कितने केयरफुल होते हैं। देखो सुई ना चुभ जाए, देखो छुरी से कट ना लग जाए, देखो कैंची कपड़े को ना काटे। इससे भी ज्यादा एहतियात चाहिए इन चीजों से अपने आप को रोशनास कराते हुए। अफसोस की बात है, लोगों के लिए तो ये थी ही, मुसलमानों को तो अल्लाह ने कहा था बस ठीक है, सहाबा के दिलों से ये चीजें निकल गई थी क्योंकि उनको यकीन आ गया था अगली बात का जिसका तस्कर आने लगा है। मैं और आप अपना जायजा लें, किसी दूसरे को मत देखिए। अब एक सवाल पैदा होता है, लोग बहुत पूछते हैं, मैं भी आपसे पूछ के जवाब दे दूं कि जब अल्लाह कह रहे हैं मोहब्बत डाली है तो फिर हम क्या करें? ना डालता, क्यों डाली उसने? पहली बात तो पहली बात है कि अल्लाह कहता डाली है तो यहां नहीं लिखा कि अल्लाह ने डाली है, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ने मुजयन किया उसको, और ना ये कह सकते हैं शैतान ने डाली, बस डाल दी, किसी ने डाल दी, मैन्युफैक्चरिंग में हो गई है ये चीज, डन। क्यों डाली? नंबर एक, इम्तिहान, कि इन चीजों में रहकर तुम अल्लाह को तो नहीं भूलते। दूसरी बात है, दुनिया का काम इसी से चलेगा। आप बताइए, बाप को, शौहर को, बेटे को, अगर इन सारे रिश्तों से और इन सारी चीजों से मोहब्बत ना हो तो काम पे जाएगा सुबह उठ के? ये जो मर्द सुबह से शाम तक काम करते हैं उसके पीछे क्या वजह है? लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, बच्चों के काम अच्छे हो जाए, बीवी हमसे खुश रहे, चलो बीवी को इस दफा भी सोने का सेट ले दे ईद पे, ये ख्वाहिशात है ना पूरी करने के लिए। तीसरी भी एक हिकमत है, और वो क्या है कि ये आखरत का तारुफ है, असल खूबसूरती वहां है, ये ट्रेलर है। अल्लाह ने दुनिया में ये चीजें चखा दी, जस्ट टेस्टर हैं ये, चेक कर लो हाउ डू यू लाइक इट, और मैच करता है तो ले लो, पसंद है तो ले लो, यू लाइक द टेस्ट टेक इट, लेकिन असल जो इनकी पैकिंग, रियल पैकिंग होगी वो आखिरत में होगी। और आपने देखा टेस्टर फ्री भी मिल जाते हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं, बड़ी चीज असल कीमत जो होती है वो बड़ी पैकिंग की भी होती है और उसकी भारी कीमत देनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने आखिरत की नेमतों का जायका चखा दिया इनकी सूरत में ताकि दुनिया का काम चलता रहे। अगर ये मोहब्बत ना हो ना तो इसका एक लफ्ज है डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं ना, आप जाके ये सातों चीजें उनके आगे बोले, कहते हैं ना खाने को दिल करता, ना पीने को दिल करता, ना पहनने को, ना हंसने को, ना बोलने को, शोहर तो अच्छे ही नहीं लगते, बच्चे तो पसंद ही नहीं है, भाई बहनों से तो पता नहीं कितने किले दिलों में पाले हुए हैं, और इंसान इन सारी चीजों में खो जाता है। सूरह कहफ 5:7 में अल्लाह तआला ने कहा, इन्ना जअलना माल अर्दी ज़ीनतल्लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने यकीनन इस जमीन में जो कुछ है उसको बना दिया ताकि हम आजमाएं कि कौन बेहतर अमल करता है। तो ये इंसान का बहुत बड़ा टेस्ट है, ये चीजें ना हो तो भी इम्तिहान है, और ये हो तो भी इम्तिहान है, ना हो छोटा इम्तिहान है, हो बड़ा इम्तिहान है। एक औरत है, शौहर नहीं है, शादी हुई तो खत्म हो गई, या हुई नहीं अभी, या बेवगी है, अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। जब ये चीजें मिलती हैं, हम में से बहुत थोड़े लोग इन चीजों को सहार पाते हैं, जिसको आप कह लीजिए कि इंसान थोड़ा ढीला पैदा किया गया ना, थोड़ी सी खुशी पे उसको लगता है बस मैं तो हवाओं में उड़ूंगा और समंदरों में तैरूंगा, और बाज दफा नमाज रोजा सब छोड़ देता है, शहवत में घूमने लगता है। याद रखिए कि ये जो मोहब्बत है ना, ये बुरी नहीं है, लेकिन इसको बुरा बना लिया जाता है। इन चीजों से मोहब्बत अगर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक की जाए तो इबादत भी है। आपने फरमाया शौहर का बीवी से ताल्लुक कायम करना इबादत है, बीवी के मुंह में लुकमा तोड़ के डालना इबादत है, मर्द हलाल कमाई करता है कस्बे हलाल है इबादत है, बीवी काम करती है घर खाना बनाती है घर साफ करती है इबादत है, बच्चे को पालती है औरत बच्चे को दूध पिलाती है इबादत है, ये सब कुछ इबादत का ताल्लुक है, एक रूहानी ताल्लुक अल्लाह ने दिलाया है कि ये सब कुछ कायम करके अल्लाह के शुक्र गुजार बनते जाओ। लेकिन जब एतदाल की हद से ये चीजें गुजरती हैं ना, तो ये मकरूह और गलीज हो जाती हैं। फिर इंसान बाज दफा हलाल और हराम का फर्क नहीं करता, और नुकसान क्या होता है, खो के रह जाता है। फिर आप देखिए कि देखने में ये सातों चीजें एक ही आयत में कही गई, लेकिन इम्तिहान फर्क है। मसलन निसा, पहले दर्जे पे औरत को रख दिया, ये मर्द का इम्तिहान है, घर का मर्द प्रोमिनेंट होता है, तो औरत की बात सबसे पहले कर दी आयत 21 ने सूरह रूम की, वमिन आयातिहि खलक़लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़्वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि हमने तुम्हारे जोड़े इसलिए पैदा किए ताकि उनसे सुकून लो और तुम्हारे उनके बीच में मोहब्बत और राहमत हो, और बेशक इसमें फिक्र करने वाली कौम के लिए बहुत बड़ी निशानी है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये तो इबादत है, और किसी दूसरे की बीवी के बारे में सोचना भी, जान के जो सोचना, ये भी हराम है। हत्ता के एक आयत में आते हैं हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि किसी का ये कहना कि फलां औरत मेरी बीवी होती, ये सूरह निसा में हदीस कोट कराऊंगी रिवायत आपको, नबी सल्लम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते थे, नसाई की रिवायत है हजरत अनस से, आपने फरमाया मुझे औरतें और खुशबू बहुत पसंद है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो जो शरीफ मर्द है ना, वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नहीं भी करेगा ना तो केयर जरूर करता है, वो तो नहीं भी रहती ना बुढ़ापे में तो फिर रहमत आ जाती है, सिंपैथी, रहम, हर वक्त इंसान इंटीमेसी में नहीं गुजार सकता। तो ये नहीं कि बीवी अब आपके काम की नहीं रही तो अब आप उसको पकड़ के घर से निकाल दें। बुखारी की रिवायत हजरत उसामा से, आपने फरमाया मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितने से बढ़कर नुकसान देने वाला कोई फितना नहीं छोड़ा, यानी आते कि चारों तरफ औरत का फितना, एक ब्लेड नहीं बिकता जब तक औरत ना हाथ में पकड़ के दिखाए, बड़ी बड़ी कादावर औरतें सर से पांव तक ऐसे सरों पे मुसल्लत की गई हैं बिल बोर्ड्स की सूरत में, कोई ऐड नहीं देख सकते, आप एयरपोर्ट से नहीं गुजर सकते, आप जहाज में नहीं बैठ सकते जब तक एयर होस्टसों की अदाएं ना आप देखें, ये सारा कुछ आज दुनिया में देखिए, औरत को एक टूल बनाकर शैतान ने दुनिया में बेहयाई और बदकारी फैला दी। सही मुस्लिम की रिवायत अबू सईद खुदरी से, आपने फरमाया दुनिया से बचकर रहो और औरतों से भी मुहतात रहो, क्योंकि बनी इसराइल में पहला फितना औरत की वजह से हुआ। चलिए बेटों की मोहब्बत, सूरत अनफाल आयत 28 में आता है, अन्नम अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। सूरत तगाबुन आयत 4 है गालिबन, इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल्लकुम फहज़रूहुम, बेशक तुम्हारी बीवियां और औलादें तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनसे होशियार रहो। अब बच्चों के साथ फितना क्या है? उनसे आप मुस्तकबिल की उम्मीदें लगा लेना, उनकी सही तरबियत ना करना। और ये जो खजाने सोने चांदी की बात है, इस पर भी एक आध हदीस नोट कीजिएगा। तिर्मिजी की रिवायत है काब बिन मालिक से, आपने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जिनको बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना दीन को माल और इज्जत की हिर्स बर्बाद करती है। अस्तग़फिरुल्लाह। आप देखिए कि दीन के बावजूद भी इंसान फायदा नहीं पाता अगर उसके दिल में इन चीजों की मोहब्बत हो। तिर्मिजी की रिवायत है काब बिन अय्याज से, आपने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और मुस्लिम की रिवायत है 7422 अबू हुरैरा से, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि इसके माल में से सिर्फ तीन चीजें हैं, जो खाया और खत्म, पहना और पुराना, और तीसरा जो अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में दिया वो आखिरत में जमा होगा, बाकी तो सिर्फ जाने वाला और लोगों के लिए छोड़ने वाला है। तिर्मिजी की रिवायत है अबू हुरैरा से, ये तो हर वो बंदा सोचे जो 50 से ऊपर जा चुके हम सब में से, जो भी है, कम वाले भी सोचे लेकिन बड़े दूसरे भी। और वो क्या है कि बूढ़े का दिल दो चीजों की मोहब्बत, लंबी उम्र और माल की कसरत, इस पर हमेशा जवान रहता है। मैं तो सोचती हूँ बंदे को सामान लपेट के बैठना चाहिए। आप देखिए ट्रेन पे जा रहे हो ना, तो दो तीन स्टेशन पहले ही बंदा अपना सामान लपेटना शुरू होता है। अभी जहाज लैंड भी नहीं पूरा किया जाता तो लोग उठना चाहते हैं कि जल्दी से अपना सामान पकड़ लें। तो 50 से ऊपर वाला तो बिल्कुल आखिरी बोगी में बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता, उसे पहले ही जाना पड़ जाए, फिर माल ही जमा कर रहे हैं। नेकियां जमा करने की उम्र में लोग माल जमा करते रहते हैं। नेकियों का गम और फिक्र जिस उम्र में लग जाए, उस वक्त भी लोगों को माल का ही फिक्र और गम लगा होता है। और इंसान की सारी दिलचस्पियां सरगर्मियां इन्हीं चीजों के पीछे लग जाती हैं। फिर अगली चीज देखिए, खैल अल मुसव्वमा की सूरत में देखिए, क्या हम अपनी सवारी से मोहब्बत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मुसनद अहमद की रिवायत है कि इंसान का बेहतरीन माल ज्यादा नस्ल वाला घोड़ा है और ज्यादा फलदार दरख्त है खजूर का। यानी उसमें खोकर अब ये नहीं कि तकब्बुर आ जाए, नुकसान क्या होता है? तकब्बुर आ सकता है, बड़ाई का एहसास है, उन चीजों को पाकर गलत जगहों पे जाना, उनका मिस यूज करना, ये सब कुछ उसमें आता है। लेकिन अगर अच्छे काम में है तो फायदा है। मुसनद अहमद की रिवायत इब्ने मसूद से, घोड़े तीन तरह के होते हैं, रहमान का घोड़ा, इंसान का घोड़ा और शैतान का घोड़ा। रहमान का घोड़ा वो है जो फी सबीलिल्लाह बांधा जाए, यानी जिसमें जाकर इंसान दीन के काम करे। फरमाया इसका गोबर, पेशाब और लीद सब का जरा, यानी ये सब गंदगी भी जो इसके जिस्म से निकलती है, कल क्यामत के दिन इसका भी वजन होकर नेकियां मिलेंगी। शैतान का घोड़ा वो जिसके जरिए एक दूसरे पर फखर किया जाए, समझ गए, कौन सी गाड़ी, किस ब्रांड की गाड़ी, किस मॉडल की गाड़ी। और इंसान का घोड़ा वो है जिस पर लोग सवारी करते हैं, यानी जरूरियात को पूरा करने वाला। अब आप और मैं खुद देख सकते हैं कि चीजें हमारी जरूरत के लिए हैं या हमारी ख्वाहिश के लिए हैं। यही सब कुछ अनाम और मवेशी में भी है। सूरत नखल आयत 57 में का, वल अनाम खलकह लकुम फीहा दिफ्फुम व मनाफी व मिन्हा ताकुलून, उसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए जिसमें गर्मी हासिल करने का सामान भी है और बहुत से फायदे, और इनमें से तुम खाते भी हो। फिर आगे भी दो आयतों में इनके मजीद फवायद लिखे गए हैं। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। इब्ने उमर की रिवायत है सही मुस्लिम में, आपने फरमाया, दुनिया फायदा उठाने की चीज है और इसका बेहतरीन फायदा नेक बीवी है, यानी जिसको अच्छी बीवी मिल गई उसको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। इब्ने मसूद से रिवायत है तिर्मिजी की, अल्लाह के नबी एक चटाई पर सो रहे थे, आपके पहलू मुबारक पे निशान पड़े हुए, जब उठे तो निशान पड़े हुए दिखे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, के हम आपके लिए बिस्तर ना लगा दें, यानी नरम गद्दा बिछा दें। आपने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, मैं तो दुनिया में एक सवार की तरह हूं जो दौराने सफर किसी दरख्त के साए में ठहरता है और आराम करने के बाद इसे छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। यानी आपने पसंद नहीं किया। तिर्मिजी की रिवायत है अब्दुल्ला बिन दुमरा से, कहते हैं, अबू हुरैरा से मैंने सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुनिया मलून है और इसकी हर चीज मलून है। मलून क्या होता है? اللہ کی رحمت سے دور، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور عالم یا طالب علم، یہ تین چیزیں اللہ کی لعنت سے بچی ہوئی ہیں، باقی سب چیزیں رحمت سے دور ہیں۔ تو میں اور آپ اب اپنے آپ کو پوچھیں، 3 سیکنڈ تک غور و فکر کریں، کیا میں اپنے آپ کو امتحان کے کمرے میں سمجھتی ہوں؟ کیا واقعی میں انہی چیزوں میں کھو کر آخرت کو بھول تو نہیں رہی، یا ان نعمتوں کو پا کر میں آخرت بناتی ہوں؟ دیکھیے، یہ را مٹیریل ہے، مثلا آپ کے ساٹا بھی ہے گھر میں، چینی بھی ہے، نمک بھی ہے، پر آپ کھاتے ہو نہیں سکتے نا، آپ ان چیزوں کو ملاتے ہیں، پھر کیک بنا لیتے ہیں، پھر کیک مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ بہت اہم بات بتانے لگی ہوں، یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے ہمیں را مٹیریل دیا ہے، ان کو جمع کرو اور اس سے آخرت بناؤ۔ مولانا رومی نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ کشتی پانی میں چلتی ہے، پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا، لیکن وہی پانی زیادہ ہو جائے، طوفان کی صورت میں جب ہوتا ہے تو کیا ہوگا، کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ کہتے ہیں یہ دنیا دل سے باہر رہے تو دل کی کشتی سلامت ہے، دنیا زیادہ ہوگی آخرت فراموش ہو جاتی ہے، آخرت ڈوب جاتی ہے دنیا کی فگرز کے بڑے ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سب کچھ کہہ کر آپ کو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بیلنس رکھو، نہ تو بالکل چھوڑ دو اور نہ ہی نہیں میں کھو جاؤ، اچھے طریقے سے جو کچھ ہے اس سے کرو۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب۔